सम्मान योग्य सब संगतियों पति प्रमाण करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी इच्छा कल एक मैं विचार फड़े समक्ष भेंट की सी कि मनुख दी कर्म करदे करदे जब उस कर्म करने की आदत बन जाती है फिर उस आदत नूं बदलना बहुत औखी गल नहीं बदली जा सकती। बड़े बड़े महापुरुष सतपुरुष इस गल नूं कबूल कर गए हैं कि असीं नहीं बदल सकते। बदलेगा कोई जिसकी अजे आदत नहीं बनी। शुभ कर्म जिसकी आदत नहीं बनी उन्हों शुभ कर्मा तो होड़िया जा सकता उन्हों पैरे पासे लाया जा सकता ते अशुभ कर्मा भी जिसकी आदत नहीं बनी उन्हों चंगे पासे भी लाया जा सकता पर जिसकी आदत बन गई है शुभ नूं अशुभ नहीं बनाया जा सकता ते अशुभ नूं शुभ नहीं बनाया जा सकता ऐसा गुरबाणी का फैसला। सतपुरशां दे उपदेश संदेश उन्हां मनुखां वास्ते ने जो दरम्यान विच खड़े ने। बुरे कर्म भी जिसकी आदत बन गई एक कर्म कीता उस कर्म ने फिर कर्म की प्रेरणा की सहजे सहजे आदत बन गई उसनों बदलना अत्यंत औखा। कर्म गुरबाणी ने तीन तरह के मने मन बच कर्म शरीर करके करना मन करके करना बाणी करके करना बोल के करना। जो मनुख बोलता है ओदे संस्कार बनते हैं जो मनुख मन करके सोचता है ओदे संस्कार बनते हैं जो मनुख शरीर करके करता है ओदे संस्कार बनते हैं। बदकिस्मत यह है लोग उसमें बुरा कर्म मनते हैं जो शरीर नाल कीता जाए या जबान नाल कीता जाए जो मन नाल कीता गया उन्हें बुरा नहीं मानते हालांकि वह भी बुरा ही। तीन कर्म ने मानसिक शरीरक वाचक। मन बच कर्म हर गुण नहीं गाए यह जी सोच धर्म। साहब कहने तीन ही कर्मा तो घोर है ना मन करके ना शरीर करके ना वाणी करके किसने हरि के गुण गाए। तो इस वक्त जो मैं थोड़े समक्ष अर्ज करना चाहना हो कि जो आदत बन गई कर्म की चाहे मानसिक जो मनुख अज दिन भर कुछ बुरा ही सोचता रहा किता बुरा नहीं इसने बोलिया भी बुरा नहीं तो ये जो इसने अज बुरा सोचा कल भी सोचेगा अज दे सोचे हुए ने कल मजबूर करना कि फिर सोचेगा सहजे सहजे बुरा सोचने की इसकी आदत बन जाए सही नहीं सोच सकेगा। अब बुरा कीता है कल करेगा परसों करेगा सहजे सहजे बुरा करने की शरीर के तल पर आदत बन जाएगी। अब जबानों कौड़ा बोलिया झूठ बोलिया मिथ्या बोलिया अनर्थ बोलिया फिर कल बोलिया परसों बोलिया सहजे सहजे जबान नूं मिथ्या बोलने की आदत ही बन जाएगी और जिसकी आदत बन गई है सतगुरु कहते हैं उसनों मोड़ना बड़ी औखी गल है ते बुराई जिसकी आदत बन गई है उसे गुरबाणी मूर्ख कहती और उस मूर्ख नूं बदलना बड़ी औखी गल है और ऐसा मूर्ख सच नूं कबूल करने तो बिल्कुल इनकारी होंगे। साहब कहते हैं मूर्ख है कौन मूर्ख हां सिर मूर्ख है जे मन्ने ना ही ना जो सच तो इनकारी है मूर्ख है। तो हम चार अरब की आबादी है तो मूर्खां की तादाद तुसी गिणो कितनी बनती है क्योंकि जो सच तो इनकारी है नाम तो इनकारी है परमात्मा तो इनकारी है। साहब कहने निरा मूर्ख नहीं बल्कि मूर्खां का सरदार है मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने ना ही ना। दुनिया भर की सियाणत जताई जा रही है सच तो दूर है नाम तो दूर है सहज कर्म नहीं है मूर्ख है कोई सियाणा नहीं बिल्कुल मूर्ख है। और इस तरह के मूर्खा की जी तादाद है बहुत ज्यादा सहज कर्म असंख्य मूर्ख अंध को असंख का मतलब है जो संख्या विच ना आवे, जो गिनती विच ना आवे, बहुत है आनंद है। मूर्खां की तादाद बहुत है जो सच तो इनकारी है। इतनी मैं अर्ज कर रहे हां, सच नु सुन लेना होर गल है, सच नु मन लेना होर गल है, शुभ कर्मा बारे सुन लेना होर गल है, शुभ कर्म कर लेने होर गल है। सुनन नु ते कोई भी सुन लेगा, कोई बहुत औखी गल नहीं। जब कर्म की बारी आएगी उदों उखैली प्रतीत होगी। तो जो सिर्फ सुन सकता है ते फिर कर नहीं सकता, वो भी उसे ही सिलसिले च आ जाता है जिसका जिक्र मेरे पातशाह कर रहे हैं। असंख मूर्ख अंध गोर, अंध गोर गहरा अंधकार, मसिया की रात है, कोई चानना नहीं, अपना हथ भी नहीं दिसता। और इसे अंधेरे बीमारी के कटाणु पलते हैं, बीमारी के जरासीम पलते हैं, औगुणा दे, क्योंकि एक अंधेरा ही काफी है, बाकी सारी भटकना अपने आप आ जाएगी। इस वास्ते कहना औगुण बहुत ने, बहुत ने, जिवें बीमारियां बहुत आउंदियां, तंदुरुस्तियां ते बहुत नहीं ना आउंदियां। कोई बंदा तंदुरुस्त होवे तां सानू ये पुछण दी लोड़ नहीं भी तैनू कहड़ी तंदुरुस्ती है, पुछदे हां नहीं, पर बीमार है जरूर पुछदे हां तैनू कहड़ी बीमारी है। तो औगुण ते बहुत ने, अंधेरे औगुण पनपणगे, अंधेरे विच औगुण वधणगे। ते मूर्खता सब तो वड्डा अंधकार है। मूर्खता, मूर्खता का जन्म किस तरह आता है? बिना सोचे समझे विचारे कर्म करी जाना, कि कर्म सच से पूरा उतरदा है कि नहीं, इसके बारे सोचना ही नहीं, विचार नहीं है। विचार शक्ति पशुआ को नहीं है, ते विचार शक्ति का मनुख भी प्रयोग ना करे तो फिर मनुख ते पशु दे कोई अंतर रह नहीं जाता। इतने आके सतगुरु ने कह दिता है, करतूत पशु की मानस जा लोक प्रचारा करे दिन रात। है ते मनुख पर पशुआ की तरह जीवे, और सब तो के नीवे पद्धर का मनुख है, सब तो जिहड़ा उच्चे पद्धर का मनुख है। गुरबाणी विच उसके बारे ख्याल आते हैं कि वह जमदिया ही परमात्मा की गोद से चलता है, जमदिया ही सुचेत होता है। गल वाकई हैरानगी वाली, पर सतगुरु की बाणी च ऐसा लिखे, तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणिया। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज की उपमा करते कहते हैं, हे गुरुदेव, हे गुरु अर्जन देव जी, तुम जमदिया ही ब्रह्म की गोद दे, तुसी जमदिया ही ब्रह्म नूं पहचाणिया, पूर्वले संस्कार ने। इस तरह के पुरुषां नूं कहिण अवतारी पुरुष। जन्म लिया है सिर्फ संसार नूं जन्म मरण तो निवृत्त करने वास्ते, इस हमदर्दी करके, इस परोपकार करके। इस वास्ते साहिबां दी बाणी कहिंदी है, जन्म मरण दोहूं में नाहीं, जन परोपकारी आए। जन्म मरण विच नहीं है, पर संसार विच आन का तरीका तो यही है, जमना पैंदा है। और आए सिर्फ इस वास्ते ने कि समुचे जगत नूं जन्म ते मरण तो निवृत्त किया जाए। तो मनुखां दी दुनिया च एक एक मनुख ने, जिन्हां नूं असीं अवतार, गुरु, पीर, पैगंबर, रहबरी पुरश कहिंदे हां, क्योंकि शकल सूरत इन्हां दी भी मनुखां दी तरह हुंदी है, इक ही होंदे ने। ਇਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਰਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਕੋਈ ਦਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਏ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬੈਠਣ ਦੀ। एकदम माता जी ने चुक लिया, बई नहीं, ये सतगुरु का सिंघासन है, इत्थे नहीं बैठना। कहिंदे गुरु अमरदास जी महाराज ने चुक के आप बिठा दिता और जबान चुकेया, ये दोहता बाणी का बहुता, इन्हें ते बैठना है, इत्थे बाणी का सागर है, इत्थे ब्रह्म ज्ञानी है, इनू सिर्फ ममता की अख नाल ना वेख, इन आत्मा की अख नाल वेख। इते अवतार है, इते कोई ब्रह्म ज्ञानी है, इते दोहता बाणी का बहुता, इते बाणी का जहाज है। इते जगत के वास्ते उदाहरित रहने वास्ते शरीर धारण किया। जन मत है, गुरु मत है, ब्रह्म पछाण भट भी कहते हैं कि जमद्या ही गुरमत कोल सी गुरु की मत, जमद्या ही ब्रह्म की पहचान कोल सी, जमद्या ही रब्बी लगन कोल सी, जमद्या ही आत्मक तरंग कोल सी। तो एक तो यह पुरशन है, यह संसार विच बहुत थोड़े बहुत थोड़े। दूसरे वो ने जो चल चल के पहुंचते हैं परमात्मा सच तक, साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, उन्होंने भगत कहते, साधक कहते हैं, साधु कहते हैं। साधना कर करके पहुंचे ने, साधना कर करके गुरु अर्जन देव जी नहीं पहुंचे। जनमत ब्रह्म गुरमत ब्रह्म पछाने, ये जमदिया ही ब्रह्म की गुरु की मत लेके आए हैं। साधना कर करके गुरु नानक नहीं पहुंचे, वो जमदिया ही रब्बी सूझ ते समझ लेके आए। और जन्म साखी च इस तरह दियां सैकड़े कहानियां। कभी कभी संसार उत्ते इस तरह के पुरश आते हैं जो जमदिया ही ब्रह्म ज्ञानी ने, जमदिया ही सच दे लीन ने, जमदिया ही सुचेत ने। इन्हों आख्या गया है कि जन्म मरण दो मैं नाही, जन्म परोपकारी आए। जन्म तो कबूल कर दिन, जन्म मरण की निवृत्ति हो सके जगत की। जिस तरह जेल के अंदर कैदी भी बैठे हैं, पर जेल के अंदर जेलर भी बैठा, जेल का स्टाफ भी बैठा, वह कैदी तो नहीं ना। उन्हों की मर्जी है जेलर की, अफसर की जदों बाहर आ जाए जदों अंदर चला जाए। जेल के अंदर होंदा होया भी वो कैदी नहीं, बैठा अंदर। इस तरह जन्म विच होंदा होया भी इस तरह का पुरुष जन्म विच नहीं आऊंगा। मरण विच आंदा होया भी ऐसा मनुख मरण विच नहीं आता। जन्म मरण दो मैं ना ही, देखना मात्र तो यही है कि जेल का दफ्तर भी अंदर है, जेल के उत्थे ही बैठा है, कैदी भी अंदर। देखने को इंज प्रतीत आता है महापुरुष का भी जन्म होया, यह भी किसी माता की गोद विच खेल रहा है। और यही सहजे सहजे वड्डा होया, देखने को बिल्कुल संसार की तरह प्रतीत आता है, पर नहीं, बहुत वड्डा अंतर है, स्वतंत्र है, ये बंधन विच नहीं है। ये जदों चाहे रुखसत हो जाएगा संसार तो, जदों इसका काम पूरा हो रुखसत हो जाएगा। ये अपनी इच्छा के मुताबिक आया है और अपनी इच्छा के मुताबिक जाएगा। स्पष्ट है साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी विचित्र नाटक कहते हैं कि चित ते मेरा इतने आन नहीं करता सी, चित ना भयो हम रो आवन के, मैं आना नहीं चाहता सी। चुभी रही सुरत प्रभु चरण में, प्रभु के चरणों में सुरत जुड़ी रही। पर परमात्मा ने समझाया जिम तिम प्रभु मोको समझायो, इन कह के ए लोक पठायो। समझाया नहीं, कल्याण करना उद्धार करना। जगत विच कुछ बीर रस की किरण भी जगानी तो साहब कहने, फिर मैं उस वचन नु सिर मस्तक ते रख के आया। इस तरह के जेडे पुरुष होंगे ने सारा ज्ञान ध्यान नाल लेके आंदे, सारी सूझ समझ नाल लेके आंदे। सिर्फ उम्र 5 साल दी है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी। आसाम दे राजे ने कुछ सोने के कड़े भेट किए सन, माता जी ने एक कड़ा सतगुरु नूं पहना दिता, बाल गोबिंद नूं पहना दिता। गंगा के तट ते किधरे खेड रहे सन ते वापस आए, हाथ विच कड़ा नहीं सी। माता जी ने पूछ लिया, दूजा कड़ा पहनांदे आया हाथ विच, वी इह ते दसो कड़ा कित्थे दूजा। उन्हें तो नहीं पता चलना सी, पर जो दूजा पहनान लगी हाँ तो देखे हाथ खाली, पहला कड़ा कित्थे पहनाया सी। साहब कहन आओ चल के थानू दिखाईए। माता जी नाल गए, मामा कृपाल चंद जी भी नाल गए, गंगा दे तट ते गए। ते मामा कृपाल चंद जी पूछ रहे हैं भाई दसो वो कड़ा कित्थे सुटे है, वो कड़ा कित्थे है। साहबा ने दूजा उतारिया तेन चुक के गंगा सुटिया, कहन लगा उत्थे सुटे। इतनी निर्लय कुदरती, इतनी कौतक भरी बिरती। और रोज नित नवे कौतक इस ढंग दे करने के देख के पटने देवासी दंग रह जाते। बच्चियां दे बैठ के गुरु नानक देव जी महाराज सतनाम की धुन रटन करा रहे बच्चियां च। खेड़ भी की है सतनाम की धुन, खेड़ भी की है बंदगी। सतगुरु की खेड़ भी बंदगी सी। कई दफा असी बंदगी भी खेड़ ही बना छड़ने, खिडौना ही बना छड़ने, गुरुद्वारे आवन भी खिडौना बना छड़ने, कथा कीर्तन भी खिडौना बना छड़ने, लंगर की सेवा भी खिडौना बना छड़ने, गुस्ताखी माप समुचे गुरुद्वारे में खिडौना बना छड़ने। ऐसा होंगे पर सतगुरु को देखो, उन्होंने खेड़ भी बंदगी बना दिता, उन्होंने खेड़ भी इबादत बना दिता। बच्चियां च बैठते हैं खेलदे सतनाम जपांदे ने, ते बच्चियां दी सोतली रब नाल जोड़ देंदे। तें जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणे, एक ए पुरुष ने जिन्हां नूं अवतारी पुरुष कहा जांदा है। ये पूर्वला बड़ा ज्ञान नाल लैके आंदे ने और इच्छा दे मुताबिक आंदे ने कि जगत दा कुछ कल्याण करना। इहदे बारे बहुत कुछ लिखिया है। एक गल वखरी है कि गीता का एक श्लोक बड़ा प्रचलित है जो कृष्ण ने अर्जुन नूं कहा सी, भई ऐ अर्जुन जद भी मसिया की रात अपनी शिखर ते आउंदी है दूसरे दिन तो चंद्रमा शुरू हो जाता है प्रगट होना। जुल्म की इंतहा जद संसार ते आउंदी है कोई महापुरुष फिर जरूर आ जाता है। बहु एरी गल तुलसी ने कह दी, जब जब होए सृष्ट अपारा तब तब दे धरत अवतारा। सृष्टि के जब अपार गुनाह होने लग पैन तो कोई अवतारी पुरुष आंदा, कुछ गल बनती, कुछ नवी गल करता। तो एक ए मनुख दूसरे जो चल चल के साधना कर करके मेहनत कर करके सच तक पहुंचते हैं, इन्हों भगत कहते हैं, गुरमुख कहते हैं, साधक कहते हैं, साधु कहते हैं। जमद्या इतना ज्ञान नहीं सी, जमद्या प्रकाश नहीं सी, जमद्या इतनी झलक नहीं सी, पर सहजे सहजे कुछ पूर्वले संस्कार, कुछ साधना, कुछ मेहनत, कुछ जप तक ने पहुंचा दिता। ते दूसरे पुरुष, तीसरे पुरुषों की गिनती धार्मिक दुनिया चेंज की जाती है। वो मनुख ने जिहड़े तार्किक ने, फिलोसफर ने, दार्शनिक ने, जिथे विश्वास अंदर है, विश्वास के नाल नाल शक भी बड़ा, संदेह भी बड़ा, भरोसा करते हैं पर अपने किते हुए भरोसे से भी शक करते हैं, कोई पता नहीं गल ठीक भी है कि नहीं। भरोसा करते ने एक कदम अगे चले जाते, शक करते ने फिर एक कदम पिछे आ जाते। सारी जिंदगी इसे तरीके नाल लग जाती। बहुत सारे अंदर भरोसा पैदा हो गया, कोई गुरु का शब्द सुन लिया, कोई साखी सुन ली, कभी कोई कीर्तन की धुन ने, कभी कोई कथा कहानी ने प्रेरणा दी, एक अगे कदम चले गए, श्रद्धा जाग पी, विश्वास जाग पे। फिर थोड़े दिन बाद फिर तर्क बुद्धि ने काम किया, संदेह जाग पे, फिर एक कदम पिछे। संसार में इन्हां लोगों की तादाद सब तो ज्यादा, कुछ अंदर भरोसा है, मस्जिद चले जाते हैं, चर्च चले जाते हैं, गुरुद्वारे आ जाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, पर अंदर संदेह है, शक है कि जो गल महापुरुष के बचना है, सतगुरु के बचना है, इन पूर्ण रूप में नहीं कबूलना, नहीं मनना। हम इतनी गल के स्पष्ट कर दी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, अहै मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दिदारे। मेरे को आना है ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਾਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਹੈ ਮੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੈ ਮੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸਨ ਦੇਵੋ ਨਾ ਦੀਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗੇਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਰ ਸੰਦੇਹ ਜਾਗੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਥੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਤਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਪੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਈ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ, ਤੋਸੀ ਫੇਸਨਾ, ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ, ਸਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਉਪਾਤਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਈ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ, ਕਾਫ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਕੱਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੰਜ ਕਾਫ ਦੇ ਹਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੰਜ ਕਾਫ ਦੇ ਹਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ ਕਿ ਹਰਗਿਜ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ ਈ ਪੰਜ ਮੁਆਫ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਗਿਜ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਖਾਕ ਮੰਨੇਗਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਗਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੂਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ ਕਿ ਹਰਗਿਜ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ ਈ ਪੰਜ ਮਾਂ, ਕੜਾਕਾਰ ਦੋ ਕਾ ਚਕੰਗਾ ਬਿਨਾ, ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਹੇਚ ਈ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਕੰਘਾ ਵੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਜਨਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਦੇ ਅਖਰੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਵਰਨਾ ਜੋ ਰਹਿਤ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕੜਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਰਹਿਤ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। बिना केस हेठ ई जुमला निशा तू कड़ा पाया केस कोई नहीं कोई परवाह नहीं तू कृपान पाईए केस नहीं कोई परवाह नहीं। पुरख इतनी दियां गल तू गुरु की नहीं मन सकता कि जिंदगी च बहुत वड्डिया गलां तू हाक मनिया बहुत वड्डिया वड्डिया गल एनी गल ही नहीं मन सकता एनी दियां गल। पर एक होर गल भी अगां है भाई साहब भाई चौपा सिंह जी लिखते हैं साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की प्रसन्नता लैके भाई साहब भाई चौपा सिंह आप कहते ने ज्यों का पे गधा नवार किसी खोते नु इशनान कराइए साबुन तेल मलिए ओनू सुगंधी वाले तरह तरह के अतर लाइए ते ओदे गल विच फुलां दी माला भी पहना लईए ज्यों का पे गधा नवार फूल माल ताए मूंद धरायो तैंकी कर ताकी शोभा नाई हांसी होए होत जगमाई। भाई साहब कहते ने हूं गल गल फुलां की माला भी बनाई उसनू इशनान भी करा दे उसके अतर भी मल लीए कढ़ीए बाल बाजार देख के अंदरों की इच्छा होवे भी लोगों सदी प्रसन्नता करन असी खोते नू इशनान कराया उसके गल फुलां की माला पहनाईए उसके उत्ते अतर ते सेंध लाया इस वास्ते लोग प्रसन्नता करन। भाई साहब कहने नहीं हांसी होए होत जगमाई उल्टा हंसी होगी मजाक होगा। हूं तुम आखोगे भाई साहब इतने कहना की चाहते हैं जो कुछ कहना चाहते हैं अखीरली पंक्तियां थोड़े सामने रखा तिमकू रतिया ने केस रखा है कहो कैसे वो शोभा पाए बिल्कुल कुरैती है शराब पींदा है कुठा खांदा है दुराचार करता है दुनिया भर का अनर्थ करता है पर केस रखे ने। भाई साहब कहते तो खोते नु इशनान कराया और कुछ नहीं कहते खोते की गल च फुलां की माला पहनाई और कुछ नहीं एक कोई प्रसन्नता का पात्र नहीं बन सकता एक कोई ईश्वरी लगन का पात्र नहीं बन सकता। तो फिर नंद लाल दे वाक लाजमी याद रखना जेडे पंज काप कह रहे हैं उस पंजवां परबल ककार केस है बिना केस हेच ही जुमला निशान दसम ग्रंथ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहना है मोर आ गया सुनो तुम प्यारे बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे मैनू दीदार देने ने मैनू आके मिलना है मेरे अंदर दर्शन की भुख है मैं तेरे दीदार करने ने पर ऐ तेरे को होना चाहिए बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे मैं नहीं दीदार करना। जिस बंदे के मत्थे कलगी दर लगना ही नहीं चाहते कि खास गुरुद्वारे आया किस तरह आया ठीक है बचन कौड़े पर गुस्सा कजना होवे मैं एक पाठी की तरह पढ़ के सिर्फ थानू सुना रहे हैं एक टीकाकार की तरह अर्थ थोड़े सामने कर रहे हैं सिर्फ टीकाकार की तरह एक पाठी की तरह कुछ भड़ास निकले तो कढ़ लेना आनंद लाल ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखी सिख्या गुर विचार गुरु की विचार नू खिड़े मत्थे झोली विच पा लेना बस ये सिखी है विश्वास भी जग पैंदा है गुरु ठीक कहता होगा कम से कम कुछ तो अगे पर दिन भर संगत ठीक नहीं दिन भर के विचार ठीक नहीं संस्कार ठीक नहीं फिर शक पैदा हो जाता भी छो जी ये तो गुणी गयानी कहते ही रहते इन्होंने तो काम ही आई है यह ख्याल पैदा हो जाएगा एक कदम अगे गए एक कदम पिछे सारी जिंदगी इंज लग गई पहुंचे किधरे भी रहे हूं चलन न चले भी हैं ऐसी गल नहीं है पर अगां पिछा चलते रहे कदम अगे एक कदम पिछे मेहनत बहुत की थी पले कख नहीं की झोली में कुछ भी नहीं। चौथे ओ पुरुष ने जो सिर्फ रस्ता पुछते अगे एक कदम पुटन की भी हिम्मत नहीं ते शक भी कर सकन इतनी भी बुद्ध नहीं लेकिन फिर भी पुछते सच का मार्ग की है गुरु का मार्ग की है पहुंचना है सच तक दसो पूछ लेंगे बस इतना है इसको अलावा और कुछ इन्हों की गिनती भी बहुत है पूछने वाले और कई तीन पूछने की जी नाम कैसे जपिए मैं तो कोई जवाब देना हूं भी बंदे नूं भुख लगी होवे ते अगों रख दईए रोटी ते पूछदा मैं किवें खावा अगों रख दईए पानी का गिलास जे वो पुछण लगे मैं किवें पिया तो जिहड़ा पुछदा उहनूं प्यास नहीं लगी जिहड़ा पुछे मैं रोटी किवें खावां ढंग मैनूं दसो इहनूं भुख नहीं लगी।
सत्संग करदिया करदिया भी जरा यही पूछी जाए किवें जपना है, किवें जपना है, खाक जपना, जपना ही नहीं इसमें। अंदर भुख पैदा हो जाए रसना अपने आप वाहेगुरु वाहेगुरु जपन लग पैंदी है। कबीर मेरी सिमर नहीं रसना उपर नाम, परमात्मा का नाम मेरी रसना ते, रसना चल रही है, वाहेगुरु वाहेगुरु चल रही है। और कोई ढंग है रोटी खाने का? कोई ढंग है? मुंह च पानिया ने बुरकियां तू चबानियां ने और की है? रसना नाल बोली जा गल देखने पुछदा है, चलन की हिम्मत नहीं पर पुछदा जरूर है। इतनी गल है, इन्हां दी तादाद भी बहुत ज्यादा, वो बहुत घट ने जो साधना करते हैं कि साधना कर करके पहुंच गए, वो बहुत घट ने, गिने मिने बंदे। ते जो जमदे परमात्मा की गोद दे चने, परमात्मा दे जो है सिंघासन ते ने, यह ते कई सदियां लंघदियां ने तां जाके किधरे गल बनती। अगे चलते ने पिछे चलते ने, एक कदम अगे एक कदम पिछे, यह बहुत है। हो सकता मेरी गिनती गलत हो गए, जे 100 होन बंदे ते 80 बंदे होने एक कदम अगे एक कदम पिछे। क्योंकि मैं कई शहर के हिंदुस्तान के लगातार 25 साल तो जा रहा, कई शहर लगातार 15-20 दिन बल्कि महीना महीना भी मैं रहना। 25 साल दे भी मैं वो मनुख देखे बड़ी शौक नाल सुनन आउंदे, सुनन मनन की गल है प्रेमकारी। अगे भी चलना पिछे भी चलना, जिथे कीर्तन दरबार है उत्थे भी पहुंच जांदे, जिथे कथा है उत्थे भी पहुंच जांदे। एक कदम अगे चलना एक कदम पिछे, 25-25 साल हो गए। अगे चलदे ने थोड़ी जी हिम्मत है, पर होर अगे कदम चुक सकन यह हिम्मत कोने फिर पिछे मुड़दा। सारी जिंदगी इस तरह लंघ जांदी। कुछ ऐसे बदकिस्मत ने सिर्फ पुछते ही रहते हैं, अगे नहीं चलते। भाई साहब ने उन्होंने जिक्र भी किया, भाई गुरदास जी ने, पूछत है पथक ते मार्ग न धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बासवन से जाइए। पुछते ही रहता, पुछते कहे नाम जपा जी, किवें गुरु की प्रसन्नता मिले जी, किवें रब तक पहुंची गए। ये ऐसा नहीं कि अज पुछदा पे, ये हजार दफा पहले भी पुछ चुके, ये हजार दफा होर भी पुछेगा। फिर जिन्ने चिर तक जिंदा रह गया ने पुछते ही रहना, इन्हें चलना कख भी नहीं। बस ये नहीं गल, एक तबका भी है, इन्हों की गिनती भी बहुत ज्यादा। फिर एक और तबका है जो पुछदा भी नहीं, अंदर इतना भी ख्याल नहीं। उन्हें मनुखां बारे साहब कहने असंख मूर्ख अंध को बिल्कुल अंधेरे, इतना भी ख्याल नहीं पुछ लेना, इतनी भी सूझ नहीं चल पैना, इतनी भी सूझ नहीं पहुंच जाना, बिल्कुल अंधेरे विच असंख मूर्ख अंध को बहुत गहरे अंधेरे विच, बहुत वड्डे अंधेरे विच। और इन्हां दी तादाद भी खासी है, ऐसी कोई गल नहीं, ये भी बहुत सारे हैं इस दुनिया च। बथेरे ऐसे ने जिन्हां नूं पुछण दी भी कोई लोड़ नहीं, पुछदे भी नहीं। कोई गुरु का भी मार्ग होंदा है, कोई परमात्मा का भी मार्ग होंदा है। ऐसे ही मनुखां नूं साहिब कहिंदे ने मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने ना ही ना। ऐसे मनुख दे उत्ते कोई नसीहत असर नहीं करेगी, नसीहत सिर दे उपरों लंघ जाएगी। शेख साहिब ईरान का प्रसिद्ध संत कहिंदा है, नसीहत हमा आलम चों बादे दर कफस अस्त, बगोशे मर्द में नादा व आबे दर बरबाद। जिहड़ा भांडा छलनी होवे थलों सुराख होवे ते उहदे च पानी पा दे टिकदा, कहिंदा पिंजरा उहदे च हवा नहीं टिकदी, ते टुटे हुए भांडे च पानी नहीं टिकदा। मूर्ख दे मन विच नसीहत नहीं टिकदी, अमूर है। नसीहत वास्ते उसका हिरदा बनिया ही नहीं, नसीहत वास्ते उसने कोशिश ही नहीं की। ते सारी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ते नसीहत ही है, ते ना टिके हिरदे च ते हिरदा टुटा है। और की है, हिरदे च कई सुराख ने, बेशुमार सुराख ने। भगत कबीर ने इसनों दूसरे रूप में ले लिया, कबीर बेड़ा जर जरा फूटे छेक हजार, हरुए हरुए तिर गए बूढ़े जिन सिर भार। श्री कबीर कहने एक ते देवी बड़ी पुरानी, बुढ़ी हो गई है, पुरानी हो गई, ते फिर सुराख हजारा एक नहीं हजारा, ते इस तरह की हम टूटी हुई बेड़ी च किस तरह पार जाएगा। भाव एक ते जवानी बचपना एवं बतीत कर दिता, ते बुढ़ेप ख्याल आया चलो थोड़ा जहां गुरुद्वारे जाइए, थोड़ी जी बराबरी गल भी सुन लगे बुढ़ेपे च, थोड़ा जहा गुनाहां तो वेला होया, थोड़ा जहा अनर्थ तो वेला होया, थोड़ा जहा ख्याल आया। ये भी किसी किसी अच्छा ना समझना, हर बुढ़े ख्याल आंदा है, कदा ही नहीं आंदा। तो थोड़ा जहा ख्याल आंदा है तो कबीर कहने बेड़ी पुरानी हो गई है, और मेरी पुरानी नहीं हुई, टुट भी गई है। फूटे छेक हजार, हजारा सुराख ने, भाव पैरों च दम कोई नहीं, हथा च सत्या कोई नहीं, जबान लड़खड़ांदी है, दिमाग से सोचण गल नहीं रही, ते हुण की खाक रब का चिंतन करेगा। फूटे छेक हजार, हरे हरे फिर गए बूढ़े जिन सिर भार। इस तरह के मनुखां नूं इक उर्दू का शायर कहिंदा, जब किस्ती साबत ओ सालम थी, मंजिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकिस्ता किस्ती पर मंजिल की तमन्ना कौन करे। जब बेड़ी नवी सी ते पार होण दा ख्याल ना आया, ते जब फूटे छेक हजार ते हुण पार होना बड़ा कठिन है। अब ऐसी शिकिस्ता किस्ती पर मंजिल की तमन्ना कौन करे। दरअसल ख्याल उस वक्त बहुत आ जाता है, पार जाइए ये जीवन ते कुछ नहीं देख लिया, पर हुण फूटे छेक हजार बेड़ी बुढ़ी है, पुरानी है, बेड़ी दे सुराख ने, केड़ा जवान है, केड़ा बच्चा है जिहड़ा इस मार्ग ते चले, ज्यादा बुढ़े ही। मैं ते घूम फिर के देखिया अमृत वेले करीबन करीबन धर्म मंदरां दी रौनक बुढ़िया करके ही आउंदी, जो किसी कम जोगा नहीं कहने नूं रब जोगा बनने की कोशिश करी, पर नहीं। मैं निराश नहीं करता, पर ऐसे मनुखां नूं एक महान आलम कहिंदा, न देखने की तरह हमने जिंदगी देखी, चिराग बुझने लगा तो रोशनी देखी। जिंदगी का दीवा बुझण लगा, अज पता चले वे रोशनी ते जा रही है, जीवन ते जा रहा है, जिंदगी ते जा रही है, और जीवन व्यतीत हो गया एवं व्यर्थ। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का प्रमाण, एक ते बेड़ी पुरानी और एक फूटे छेक हजार, दूसरा इसने भार बड़ा लग लिया। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज के बाद, डिकार पाथर गले बांधे, निंद पोत सिराए, महासागर समुद्र लंघना, पार न पर ना जाए। शरीर की बेड़ी जर्जरी बुढ़ी, विकारां दे पत्थरां दी मालां गल दे पा गई, निंदा दी पंड सिर ते चुक लई, ते साहिब कहन तैर ना हुण नहीं जाणदा कि हुण पार जाएगा ते किस तरह जाएगा, डुबेगा और की। विकार पाथर गले बांधे, निंद होट सिगार, निंदा दी पंड क्यों कह दिती। दरअसल जब जीवन दे कुछ प्राप्त ना होया होवे, तां फिर जिन्हां दे जीवन दे कुछ प्राप्त हो गया उन्हां बारे ईर्षा पैदा होंदी, और ईर्षा निंदा करन दे उत्ते मजबूर कर देंदी। ते अज जिसने निंदा कीती उसके संस्कार बन गए अंदर, वो तो कल भी करेगा, परसों भी करेगा, सहजे सहजे निंदा करन दी आदत बन जाएगी, फिर उसनों नहीं मोड़िया जा सकता। हुण गुरु नानक देव जी महाराज का कहना है, हर बीमारी का इलाज रब ने पैदा किया है, एक बीमारी का इलाज रब कोल भी कोई नहीं। ये पंक्ति बाबे दी है, पहले पातशाह नहीं है। औखद सबे कीते अन्न, निंदक का दारू ना। हर बीमारी का इलाज है, पर जिहड़ी निंदा करन की आदत बन चुकी है इहदा कोई इलाज उन्हें ते करी जानी, बोली जाना, अनर्थ बोली जाना, करी जाना है कुछ ना कुछ, वो चुप नहीं करेगा, अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सके। जिन्हां दे जीवन च कुछ है, कुछ सिखी की झलक होगी, कुछ बाणी की तरंग होगी, कुछ सच्चाई की उमंग होगी, ये पंडेगा, खुद पहुंच नहीं सकता, जिहड़े अगे चले गए उन्होंने निंदा करेगा, ऐनी गल। और निंदा इस गल का सबूत है, ये चलन की समर्था नहीं, तो जिहड़े अगे लंघ गए हैं उन्होंने पंडता है, बस इतनी गल है, और कुछ नहीं। साहिब कहिंदे ने ऐसे बंदियां का कोई इलाज कोई नहीं, तो जिथे सतगुरु कहते हैं रब कोल भी इलाज नहीं, उन्होंने होर कौन इलाज करेगा। औखद सबे कीते अन्न, निंदक का दारू ना। जिहड़ी भैड़ी आदि एक दफा पक जाए फिर वह हटाई नहीं जाती। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के इस संबंध में होर बोल, मच्छी तारू क्या करे, पंछी क्या आकाश, पत्थर पाला क्या करे, खुसरे क्या घरवास, अंधे दीवे रखिए, अंधे चान रखिए, दीवे बले पचास, चौणे सोना पाइए, चुन चुन खावे घास, नानक मूर्ख ए गुण बोले सदा विनाश। साहब कहने बहुती ठंड पवे बहुती ते पत्थर का की बिगड़ता, कोई बिगड़ता? ठीक है माड़ा जो उपरों ठंडा हो जाएगा, कोमल ते नहीं ना होगा। साहब कहने जरा मूर्ख है ना, रब की कितनी गल सुन लवे, बारों माड़ा जहां ठंडा होगा बिल्कुल सख्त होगा, अजे भी चोट पहुंचाने समर्थ है, अजे भी कठोरता पूरी दी पूरी कठोरता, यह अपना सुभाव नहीं बदलेगा। यह नहीं कि कोई पिघल गया है, कोई कोमल हो गया है, कोई फुला वर्गा हो गया, पत्थर ही मूर्ख है। नानक मूर्ख ए गुण बोले सदा विनाश। पर हुण कोई आखे नहीं महाराज इस तरह के मनुख थोड़ी गोद दे भी आ जाते हैं, बचन भी सुनते हैं। साहब कहने इस तरह के मनुख पत्थर की तरह ने, ठीक है ठंड पई है माड़ा जहां ठंडा हो गया है, बाकी कोमल तो नहीं होया, थोड़ा जहां ठंडा हो गया बस, बर्फ नहीं होया उन बारों ठंडा हो गया। ये पिघलन वाली गल कोई नहीं, पिघलेगा नहीं तो ठोस है। तो इस चक्कर च कदी ना पैना कि कई कीर्तन का प्रभाव पै जाता, कथा का प्रभाव पै जाता, बड़ी गल है। साहब कहने नहीं पत्थर ही ठंडे हुए ने और कुछ नहीं, पत्थर ठंडे हुए, इन्हों को पिघलना नहीं होगा। तो जो पिघलना नहीं तो फिर पत्थर ही ठंडा होया और की है, वक्ती तौर पर ठंडा होया, वो भी जब धुप निकलेगी गर्म हो जाएगा, जो विकारा भी संगत करेगा फिर गर्म हो जाएगा, फिर भी ठंडा कोई नहीं। ये बर्फ की तरह हम पिघलने वाली गल कोई नहीं, इससे पत्थर पालना क्या करे, पंछी क्या आकाश। साहब फरमान कर रहे हैं अंधे चान रखिए दीवे बले पचास, एक दीवा नहीं पंजाब दीवे जला के रख दे, अंधे दे अगो की मैंने रख दे। बोला जे समझाइए पढ़िए सिमरत पाठ, चौने सोना पाइए चुन चुन खावे घास, चौपाए जानवर दे अगो घास ते सोना रख दो, उन्हें घास चुन लेनी है सोना एक पासे रख देना है। नानक मूर्ख ए गुण बोले सदा विनाश, मूर्ख का यह गुण है सच्चाई एक पासे रख लेगा, झूठ अपनी झोली च पा लेगा, सच दे बचन। और मैं अर्ज करा कितनी रहत बैठ की गल आ गुरुद्वार लोग एक पासे रख देने मतलब की गल झोली च पा ले, मतलब की गल, और जी मतलब की गल आती है वह बस उ पशु पने घास झोली च पा ली है, रतन हीरे जवाहरात परे सुट देता, चौने सोना पाइए चुन चुन धावे घास। सैकन पशु का यह गुण है घास झोली च पा लेना है, हीरे मोती सोना पर सुट देना, उसकी यह चोण आती है, चोण जरूर करता है पर उसकी यह चोण आती है। धर्म मंदिरों में ऐसा ना समझना कि चोण नहीं आती, लोग चोण करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, और वो जी मर्जी आती है वह सिर्फ घास चुन की आती है, और सौजे सहजे अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन का उन्होंने इतना प्रबल सुभाव बन जाता है कि उस सुभाव को बदलना बड़ी औखी गल हो जाती है। उत्थे ही सतगुरु कहने नहीं समझाया जा सकता, ऐसे मनुख को बदलना बड़ी औखी गल है। बाबा फरीद कहते ने फरीद कूके दियां चांगे दियां मत्ती देंदियां नित, फरीदा जो शैतान मजाइया से कित फेर नचित। बाबा फरीद कहने कूक कूक के बोल बोल के मैं थक गया। फरीद इस तरीके नाल जगत के सामने अपनी मन भी विथिया रख दें, कूके दिया चांगे दिया मत्ती देंदिया नित, रोज मैं मत दे दे के थक गया, रोज मैं जगत नूं समझा समझा के थक गया, पर जो शैतान मजाइया से कित फेर न चित। जिन्होंने शैतान की महफिल बैठ के अपना चित बिगाड़ लिया है, मेरी गल कित्थे बनदी, मेरे बचना एक पासे रख लेंदे ने, शैतान की गल नूं झोली च पा लेंदे, से कित फेरे चित। और खिमा करनी मैं घूम फिर के देखा लोगों ने बहुती शैतानियत की झोली च पाई हुई है, जिहड़े कम कई दफा मनुख अपने घर भी करन तो संकोच करता वह कम बंदा गुरुद्वारे च कर लैंदा, अपने घर भी चाहता है रोला ना मचे, मेरे घर क्यों रोला मचे, तो पुरखा तू अपने घर रोला नहीं पाता, तेन की हक है गुरु के घर रोला पाने, तू अपने घर अनर्थ नहीं आने देता, तू की हक रखना गुरु के घर अनर्थ कर, तेरे घर कोई ओपरे भी दो चार आ जा तू कहना कोई गल नहीं, आ गए ने तो ठीक है, तो इतने तू अपन भी ना बैठन देंगे। लोगों ने इस डांगरे मंदिर भी दुनिया च बनाए ने भी सारिया वास्ते नहीं, एक ही है इंगली शैतानियत, शैतानियत चोली च पा दी। जो शैतान मनाइया से कित फेर नचित, जिन्हों के दिल दिमाग में शैतान ने वजा छड़िया वो मेरी गल कित्थे मनदे। तो फरीद मजबूर ने मेरे बोल हवा च उड़ गए, लोगों ने नहीं कबूल किया, लोगों ने नहीं मन्ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सख्ती नाल कह रहे हैं मेरी आज्ञा यही है, मेरा हुक्म यही है, मेरे बचन यही है, मैं उसके दर्शन करने अहम और आ गया। सुनो तुम प्यारे बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदार, मैनू दीदार देने ने तो इस स्वरूप है वरना कोई लोड़ नहीं। साफ गल कह दी, स्पष्ट गल कह दी। हम 50 साल तक सुनद्या सुनद्या भी जो मनना नहीं तो यह सुनना तो कोई सुनना नहीं। प्यो की गल एक दिन बच्चा नजरअंदाज करे तो प्यो एक दिन तो चलो बर्दाश्त कर लेंदा, दूजे दिन भी ठुकरा दे, तीजे दिन भी ठुकरा दे, चौथे दिन प्यो को सोचना पैंदा। वड्डे धरां ने अज एक गल आखी है, छोटे भरा ने ठुकरा दी है, कल भी ठुकरा दी है, परसों भी ठुकरा दी है, चौथे दिन भरा सोचना पैंदा इहदे नाल संबंध रखा भी कि ना। पुरखा 50 साल तो गुरु की गल सुनी आंदा है, 50 साल तो ठुकरा ही लैंदा, तेरे बारे गुरु की सोचेगा। और इतनी मैं अर्ज कर दिया कि गुरु नू जड़ ना समझ लेना, वो एक चेतन सतह है, वो एक व्यापक सतह है। और दो हालतों में मनुख गुरु नू बिदावा दे देने, बहुते सुख दे बहुते दुख दे। गड़ी नू चारों पासे मुगलां ने घेरिया सी, 9 दिन दे भुखे सिंह सन, बिदावा लिख दिता, पातशाह भुखे असी थोड़े नाल नहीं रह सकते। कई इतने रज गए ने रज के बिदावा लिख छड़े भी बहुता रज के भी असी नहीं रह सकते तेरे नाल, वो भुखे नहीं रह सके, कोई रज के नहीं रह सकता। कोई दुख करके बिदावा लिख गया, कोई सुख करके बिदावा लिख गया, आए तो एक ही अवस्था च। पर धन ने वो जो दुख दे च बिदावा लिख गए सन आके माफी मंग ली सी, धन ने, और माफी मंग ली सी 10-12 दिन। पुरखा तेन 10 साल भी हो जाए तो माफी ना मंगे तो कहना पेगा संख मूरख अंध गौर, तू बंदा के पत्थर है, बिल्कुल नहीं बदलना, बिल्कुल तब्दील नहीं होना। वो तो 12 दिन बाद आ गए सन माफी मंगा, 12 दिन बाद पातशाह बोलो गई सानू बिदावा नहीं लिखना चाहिए, गलती हो गई, अनर्थ हो गए, तो सानू हुण बख्श लो। सतगुर ने गलवकड़ी च लै लिया, तो पुरखा 10 साल हो गए तू जिहड़ा बिदावा लिखिया है अजे भी माफी नहीं मंगी, अजे भी बिदावा फड़वाया नहीं, तो फिर तू दस तू किस अवस्था का मालिक है, कित्थे खड़ा है। असंख मूरख अंध गौर, ओ मनुख जिन्हां दे कख भी असर नहीं, और जे माड़ा मोटा असर है तो पत्थर ठंडा होया और कुछ नहीं, फिर धुप लगेगी फिर गर्म हो जाएगा, पिघलेगा नहीं फिर ढलेगा नहीं, ये गुरु वाला बनन की कोशिश नहीं करेगा। संसार विच इस तरह के मनुख भी बहुत ने, क्योंकि साहब गिनती करते हैं असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर आराम होर। मूर्खता के थले सारे अवगुण आ जाते हैं जिन्हों का जिक्र गुरु नानक देव जी महाराज ने कर दिता। मूर्खता सोचना ही नहीं, अपनी अकल तो विचारना ही नहीं, गुरु की मत अपनी मत नाल जोड़नी नहीं, इस वास्ते अपनी थां ते टिके रहना है, एक कदम भी अगह चलन की कोशिश नहीं करनी। जिहड़े चल चल के साधना कर करके पहुंचते हैं रस्ते च किधरे ठोकर खा जान गिर जान कहिंदे उन्हां नूं महसूस बड़ा आउंदा है, ते एक ओह ने जिहड़े गिर गए ने ते इह भी नहीं पता चलिया गिर गए। भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने तैसे साकत सुभाव जल नैन गत, तैसे सिखन सुभाव जल नैन गत, साकत सुभाव लाख पाहुन पतन से। भाई साहब भाई गुरदास, सिख कोई गलती करे, सिख साधक चल रहा सी गिर गया ठोकर खा गया, चलने बंदा गिर भी जाता ठोकर भी लग सकती हो जाता एक्सीडेंट चलने, तो भाई साहब कहने उठन की कोशिश करेगा उदा गिरना इंज होगा जिम्मे पानी च लकी है, हो जाएगा कोई बुरा कर्म उस तो, हो जाएगी कोई बुराई, हो जाएगी कोई गलती, पर गलती इंज जिम्मे पानी च लकीर, पानी च लकीर रही ना इंज कटो तो मिल गया। कीती सी बुराई ढो छी हो गया सी अनर्थ ठीक कर छे कोई महान तो लो गए सी सुधार कर लिया पर साकत स्वभाव लाख पाहुन पतन से पाहुन पत्थर जोड़ा साकत है वो तो एक गलती की थी इंज गलती की थी जिम्मे पत्थर लकीर पै गई ठीक मिटनी ही नहीं पत्थर की लकीर कितने मिट गई पानी की लकीर मिट गई पत्थर की लकीर नहीं मिटती पत्थर दे गड़ के लकीर पा दो वो तो फिर रही हमेशा रही एक गलती कर दी मरण तक वो गलती ना ली गई पत्थर की लकीर मजा ले मिला गई मजा ले उसनों ठीक किया हो नहीं ठीक किया तो वह पत्थर की लकीर कैसे सिखन स्वभाव जल मैं नगर सिख भुल हो गई गलती हो गई और विछड़ विछड़ जो मिले विछड़िया वास्ते भी गुरु के दर से थां है ऐसी कोई गल नहीं भाई साहब कहने गलती उसकी इस तरह होगी जिम्मे पानी च लकीर आया सी बुरा ख्याल चला गया की सी गलती सुधाई कर ली हो गई सी भुल ठीक कर ली पानी की लकीर ठीक हो गई पर साकत स्वभाव लाख पाहुन पतन से मनमुख साकत उन्हें भुल इंज की जिम्मे पत्थर की लकीर कर छड़ी तो कर ही छड़ी मजा ले उसनों ठीक करना मजा ले उसनों धोना है मजा ले इस लकीर को मेटना है नहीं मेटना और ये लकीर मरदे दम तक मरण पर्यंत तक अखीर तक तो गुस्ताखी माफ जी लकीर नहीं मिटी वो तो पत्थर है जी लकीर मिट गई वो पानी की तरह ठीक हो गई और लकीर दोवें थां ते पै सकती है पानी च भी पै सकती है पत्थर च पै सकती है गलतियां वास्ते सिख दे हिरदे च कोई थां नहीं आउंदी पर हो जाती है वो हिरदे च थां नहीं सुधाई कर लैंदा ठीक कर लैंदा पानी की लकीर है बिल्कुल ठीक हो गई इस तरह के जो मनुख होंगे ने जिन्ने चिर तक गलती की सुधाई कर ना लैन चैन नाल नहीं बैठणगे समा हो गया एक गाथा छोटी जी मैनू चेते आई थोड़े सामने रखा एक दिन मैं तुलसी कृत बालमित जी कृत रामायण है इन्होंने दोवों का अध्ययन कर रहा है दोवों में फर्क की है क्योंकि बाल्मीक ने जी लिखी है रामायण 3000 साल पहले लिखी है तुलसी ने लिखी है गुरु अर्जन देव जी महाराज के वक्त जहांगीर काल के समय रामायण जी हिंदुस्तान बड़ी प्रचलित है आपकी ज्ञात वास्ते अर्ज करा एक रामायण भाई संतोख सिंह जी ने भी लिखी है शायद उसनों पंजाबी भाषा विभाग छाप दे गया जिद नहीं छापी और दसम ग्रंथ दे भी रामा अवतार है वह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का तस्वीर है तमाम 24 अवतारा की कथा गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप लिखी लिखण तो मुराद यह नहीं कि इन्हों अवतारा के पुजारी ने कृष्णा अवतार भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखे चंडी चरित्र भी लिखे रामा अवतार भी लिखे 24 अवतारा की कथा लिख के जगत के सामने रखी सिर्फ इस वास्ते कि ब्राह्मणा ने फैसला किया कि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण को पहना पढ़ानी है दूजे को नहीं शूदर वेद नहीं पढ़ सकता शूदर उपनिषद नहीं पढ़ सकता शूदर शास्त्र नहीं पढ़ सकता तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे थोड़े शास्त्र का स्वरूप मैं ऐसा बना देवांगा सारे पढ़ लैन की लिखे तो पौंटा साहब बैठ के 24 अवतारा की कथा ते धर्म ग्रंथां का टीका कर छड़िया जिहड़े पुराने सन साहब स्वयं लिखते हैं कि दसम कथा भागवत की भाखा करी मना भाखा कहने तर्जमे टीके भाई मैं टीका की थी जिन्हें पुराने धर्म ग्रंथ ने मैं टीका कर रहे हैं मेरे ख्याल नहीं ने किधर मेरे ख्याल समझ लो मेरे ख्याल नहीं ने कृष्णा अवतार लिख के फिर अखीर में सतगुरु लिखते ने मैं ना गणेश है प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हो नहीं ध्याऊं कान सुने पहचान न दिन से लिव लागी मौरी पग हिंस मेरी प्रीत ते अकाल पुरख के चरणा च है कृष्ण का मैं ना सुने है लिख रहा गल इस तो अलावा होर मेरी कोई जानकारी नहीं इस तो अलावा होर मैनू कोई पता नहीं मेरे कोई इष्ट नहीं इतनी मैरिज कर लेना लेकिन ज्ञान जगत नू देना सी सतपुरुषां दा जिहड़े अवतारी पुरुष होए ने अवतारी पुरुष तो सतगुरु इनकारी नहीं पर मेरे इष्ट नहीं ने मेरे वास्ते भगवान ते रब नहीं ने मैं ना गणेश है प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हो नहीं ध्याऊं कान सुने पहचान न तिन स्यों लिव लागी मौरी पग इन सों तो ये जो रामा अवतार गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखे कृष्णा अवतार घट पढ़न दे चाया है भाई संतोख सिंह जी भी घट पढ़न दे चाया है हिंदू जगत में बाल्मीक भी घट पढ़न दे चाया है सिर्फ तुलसी पढ़िया गया क्योंकि समझ दे चाह जांदा छेती समझ दे चाह जांदा तो तुलसी कृत रामायण एक दिन मैं पढ़ रहा से ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਉਸਨੇ ਲਿਖੀ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਸਾਧਕ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਗਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸੰਦੀਪਨ, ਅਵੰਤਿਕਾ, ਉਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਅਵੰਤਿਕਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਬਨ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਔਰ ਸੁਦਾਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਸੰਦੀਪਨ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਸੰਦੀਪਨ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਗੱਠਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪਨ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਬਸਤਰ ਧੋਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਦਬਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਤਪ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਦੀਪਨ, ਸੰਦੀਪਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕੇ ਜੋ ਰਾਵਣ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਬੜੇ ਦੁਖਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀਤਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ? ਤੋ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਹਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਖ ਵਿਪੰਨ ਕਹੇ ਸੋਭਾ, ਦੇਖਤ ਕਹਿ ਕਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਛੋਭਾ, ਨਾਰ ਸਹਿਤ ਸਭ ਖਗ ਮ੍ਰਿਗ ਬੰਦਾ, ਮਾਨੋ ਮੋਰ ਕਰਤ ਹੈ ਨਿੰਦਾ। ਐ ਲਕਸ਼ਮਣ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ? ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਰ ਲੰਗੂਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਪੈ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ? ਦਰਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਉੱਡਦਾ ਪੰਛੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਨਾਰ ਸਹਿਤ ਸਭ ਖਗ ਮ੍ਰਿਗ ਬ੍ਰੰਦਾ, ਮਾਨੋ ਮੋਰ ਕਰਤ ਹੈ ਨਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਖਤ, ਖਗ, ਪੰਛੀ, ਬੰਦਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਸੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਧੀਰਜ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਚੋਂ 5-10 ਹਿਰਨੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਰ ਵੀ ਹੈ ਹਿਰਨ, ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਿਰਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇ ਦੇਖ ਮ੍ਰਿਗ ਨਿਕਸ ਪਰਾਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਨ। ਹਮੇ ਦੇਖ ਮ੍ਰਿਗ ਨਿਕਸ ਪਰਾਈ, ਮਿਰਗੀ ਕਹਿ ਤੁਮ ਕਹਿ ਭੈ ਨਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਫਰਲਾਂਗ ਦੌੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਗਿਆ, ਦੌੜੇ ਵਾਲਿਆ ਹਿਰਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਵਿਆਕੁਲ ਮਨ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਿਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ ਸੁਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਛੀ ਪਸ਼ੂ ਜਦ ਕਦੀ ਰਿਤਾ ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ ਸਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਬੀ। ਕੁਛ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਮਗਰ ਮੱਛ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚ। ਉਹਨੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੰਜ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹ ਭੇਟ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਿਰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਰੋ। ਹਮੇ ਦੇਖ ਮ੍ਰਿਗ ਨਿਕਸ ਪਰਾਈ, ਮਿਰਗੀ ਕਹਿ ਤੁਮ ਕਹਿ ਭੈ ਨਾਈ। ਤੁਮੇ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮ੍ਰਿਗ ਜਾਏ, ਕੰਚਨ ਮ੍ਰਿਗ ਖੋਜਨ ਇਹ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਨ ਲੰਘਿਆ ਪੰਚਵਟੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਚੋਲੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਚ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਾਤੂ ਦਾ ਹਿਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਾਤੂ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਛਲ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਸੀਤਾ ਹਟ ਕਰ ਬੈਠੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਇਸ ਡੰਗ ਦੀ, ਧਾਤੂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਛਲ ਦੂਤ ਸੀ, ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਰਾਵਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਤਾ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਇਹਨਾਂ ਹਿਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਹਮੇ ਦੇਖ ਮ੍ਰਿਗ ਨਿਕਸ ਪਰਾਈ, ਮਿਰਗੀ ਕਹਿ ਤੁਮ ਕਹਿ ਭੈ ਨਾਈ। ਤੁਮੇ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮ੍ਰਿਗ ਜਾਏ, ਕੰਚਨ ਮ੍ਰਿਗ ਖੋਜਨ ਇਹ ਆਏ। ਸੰਗ ਲਾਈ ਕਰਨੀ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਨੋ ਮੋਰੇ ਸਿਖਾਵਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਲੀ ਚ ਪਾ ਲੈ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੰਗ ਲਾਈ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਨੋ ਮੋਰੇ ਸਿਖਾਵਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਖ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧੋ ਨਾ ਦੇਵੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਦੈਂਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਬੂਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। कबूलन में भी राजी नहीं, मनन में भी राजी नहीं। ऐसी आदत बन गई है, अपना अंधेरा दिसता ही नहीं, अपनी भुल नहीं दिसती। कहते ने जिसन अपनी भुल दिस पै वह इंसान है, ते जेड़ा अपनी भुल न सुधार लवे वह देवता है, ते जिसन अपनी भुल दिखाई ना दे ते सुधारे भी ना वह शैतान है, वह दैत है, वह पशु है, उस मनुखता भी कोई नहीं। देवता अपना कितने, फरिश्ता अपना कितने, तो जिसन अपनी भुल दिखाई नहीं देती दूर किस तरह करेगा। साहब कहने इस दुनिया च अणगिनत मनुख ने जिन्होंने अपनी भुल नहीं दिखाई देती, अपनी गलती नहीं दिखाई देती, तो जब गलती नहीं दिखाई देती तो महापुरुषों के वचन व्यर्थ चले जाने। साहब कहने ना उन्हें मूर्ख ए गुण बोले सदा विनाश, गुण भरे बोलों के सामने भी वह विनाश बोलेगा, कबूलन नूं राजी नहीं होगा, प्यार होगा ही नहीं कि इन्हों बोलों झोली विच पा लईए। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज बख्शा वरतावन, एक कदम तुसीं जरूर चलियो क्योंकि गुरुद्वारे आ जाते, यह तो हुण मन्नी नहीं जा सकती गल कोई तुसीं चले ही नहीं, क्योंकि जब चलिया ही नहीं ना असंख मूर्ख अंध गोर तो उन्होंने आखी तुसीं चलियो तो हुण अरदास करो पातशाह पिछे ना मुड़ी अगे चली। अगे चलना की है, फिर मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बोल थोड़े सामने रखते हैं। अहै मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के सन देवो ना दीदारे। ये हुण कुछ किस्मत होंगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बोलों नूं अपनी झोली च पा लेंगे, ते जिसने गुरु के बचना नूं झोली च पा लिया यकीन जाणो उस सिख नूं गुरु अपनी झोली च थां देंदा। सिख गुरु की गोद प्राप्त करेगा, गुरु की प्रसन्नता का पात्र बनेगा। मेरा पातशाह रहमत करे, सारिया के उत्ते मेहरबानी दृष्टि करे, ते सारिया अपनी गोद से स्थान देवे। इतने वचन प्रवान करने, कल फिर थोड़े चरण परसंगे भुल चुक लई क्षमा की याचना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।